नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। स्टार्टअप सेटल ने अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए गृहस और वी फाउंडर सर्कल सहित निवेशकों से 10 करोड़ रुपए जुटाए हैं। स्टार्टअप सेटल के बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम और चेन्नई में 60 से अधिक को लिविंग सेंटर्स हैं। इनमें कुल 4000 बिस्तर हैं। ये एक बेड को किराए पर देने के लिए प्रतिमाह 12,500 से 18,000 रुपए तक लेते हैं। सेटल की ओर से जारी बयान के अनुसार इस राशि सहित कंपनी अभी तक कुल 15 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। कंपनी इस राशि का इस्तेमाल कारोबार का विस्तार करने के लिए करेगी। स्टार्टअप सेटल की शुरुआत 2020 में की गई। कंपनी लोगों को किराए पर को लिविंग पीजी तथा अपार्टमेंट मुहैया कराती है। सेटल के सह संस्थापक अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि को लिविंग क्षेत्र व्यापक विस्तार के चरण में है। सेटल ने इस अवसर पर तुरंत व प्रभावी ढंग से फायदा उठाया है और वो क्षेत्र में अग्रणी बनने को तैयार है। रोजमर्रा के उत्पाद FMCG बनाने वाली प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को 5 राज्यों के अधिकारियों से कुल 477.5 करोड़ रुपए के GST मांग तथा जुर्माना नोटिस मिले हैं। HUL ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि इन आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है और कंपनी इसका आंकलन करेगी। कंपनी को पिछले सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को GST क्रेडिट की अस्वीकृति, प्रवासियों को दिए जाने वाले भत्ते सहित वेतन आदि जैसे मुद्दों पर विभिन्न राज्यों के GST अधिकारियों से 5 नोटिस मिले। HUL के अनुसार इन GST मांगों तथा जुर्माना आदेश का कंपनी की वित्तीय स्थिति, संचालन या कंपनी की अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस्पात मंत्रालय और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग अमेरिका को रियायती दरों पर इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्यात की निगरानी के लिए एक आंतरिक तंत्र स्थापित करेंगे, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इन उत्पादों के भारतीय निर्यात पर पहले अमेरिका में अतिरिक्त शुल्क लग रहा था। अमेरिका ने 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस्पात उत्पादों पर 25% और एल्यूमिनियम के कुछ उत्पादों पर 10% आयात शुल्क लगाया था। भारत ने जवाबी कार्यवाही में जून 2019 में 28 अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया था। सेब तथा अखरोट जैसे 8 अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क हटाने के भारत के फैसले के बाद अमेरिका अब अतिरिक्त 25% और 10% शुल्क का भुगतान किए बिना भारत से इन आयातों की अनुमति दे रहा है। अधिकारी ने बताया कि दोनों देश अतिरिक्त शुल्क चुकाए बिना एक वर्ष में कम से कम 3,36,000 टन इस्पात तथा एल्यूमिनियम के कुछ उत्पादों के अमेरिका को घरेलू निर्यात को सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। वाणिज्य विभाग ने अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए बिना अमेरिका को कुछ इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों के घरेलू निर्यात को संभव बनाने के लिए संयुक्त निगरानी के संबंध में शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है और अमेरिका ने प्रस्तावित पाठ पर सहमति व्यक्त की है। अधिकारी ने कहा, खान, इस्पात मंत्रालयों और DPIIT से खासकर अमेरिकी 232 उपाय के तहत अमेरिका में इस्पात तथा एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्यात पर नजर रखने के लिए एक आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया। इसके तहत अधिकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए वर्ष में 2 बार बैठक करेंगे। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड की कुल बिक्री दिसंबर 2023 में 10% की गिरावट के साथ 16,324 इकाई रही। दिसंबर 2022 में ये 18,138 इकाई थी। अशोक लेलैंड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि घरेलू बिक्री 10% घटकर 15,323 इकाई रही। दिसंबर 2022 में ये 17,112 इकाई थी। घरेलू बाजार में मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 11% घटकर 10,102 इकाई रही, जो 2022 में इसी महीने में 11,399 इकाई थी। कंपनी के अनुसार पिछले महीने घरेलू बाजार में हल्के वाणिज्यिक वाहन की बिक्री 9% की गिरावट के साथ 5,221 इकाई रही, जो दिसंबर 2022 में 5,713 इकाई थी। सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में किसी कंपनी द्वारा लैपटॉप और डेस्कटॉप जैसे पुराने IT हार्डवेयर सामानों को घरेलू शुल्क क्षेत्रों स्थानांतरित करने से जुड़ी पाबंदियों में ढील दी है। सीमा शुल्क कानूनों के लिए SEZ को विदेशी क्षेत्र माना जाता है और इन क्षेत्रों से घरेलू शुल्क क्षेत्र या घरेलू बाजार में सामान लाना आयात के समान है। आमतौर पर DTA की एक कंपनी को SEZ से इन सामानों के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इन पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि पुराने आईटी हार्डवेयर सामानों को किसी कंपनी द्वारा अतिरिक्त इस्तेमाल के लिए लाइसेंस के बिना एसईजेड से डीटीए में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन केवल डीटीए संचालन में इसका इस्तेमाल किया जाए। साथ ही इन उपकरणों का उपयोग एसईजेड इकाइयों में 2 साल तक किया गया हो और वो विनिर्माण की तारीख से 5 साल से अधिक पुरानी ना हो। डीजीएफटी के अनुसार एसईजेड ने डीटीए तक प्रयुक्त आईटी परिसंपत्तियों की आयात नीति अधिसूचित की गई है। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगी पाबंदियों में बदलाव किया था। इसके बाद आयातक मात्रा और मूल्य का विवरण देने पर मंजूरी लेकर विदेशों से आईटी हार्डवेयर का आयात कर सकते हैं। नई आयात प्रबंधन प्रणाली का मकसद बाजार की आपूर्ति को प्रभावित किए बगैर या बोझिल लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाए बिना देश में लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर नजर रखना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।